Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
शुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद एक अध्याय तीन श्लोक क्रमांक 44 और साथ साथ में आज चौथे अध्याय का पहला श्लोक भी पढ़ेंगे। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रस्ते विप्र विप्रऋषि भूरि तेजसः अहम् च अध्यगमम् तत्र निविष्ट तत् अनुग्रहात् सः अहम् वा श्रवयिष्यामि यथा अधीतम् यथा मति। तत्र कीर्तयतो विप्र विप्रस्येर्भुरि तेजस तत्र कीर्तयतो विप्र विप्रस्येर्भुरि तेजस अहं चाद्यगमं तत्र निविष्ट तदनुग्रहात् सोहम वस्त्रावस्यामि यथादीतं यथामति तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षेर्भुरि तेजसः अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टत्वदनुग्रहाः सोऽहं वस्त्रावस्यामि यथाधीतं यथामति तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसा अहं चाधिगमं तत्र निविष्ट तदनुग्रहात् यथादीतं यथामति तत्र कीर्तयता विप्रा विप्रेषु भुवि तेजस अहं साध्यगणं तत्र यथादीतं यथामति तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसा अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टदनुग्रहात्स्यामि यथादीतं यथामति तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसा अहं चाद्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात् यथाधीतं यथामति। शब्दों का अनुवाद इस प्रकार है, स्कैनर के अंदर ऐसा वाला चीज है लेके आ जाओ, स्कैनर के अंदर खोल कर तत्र वहाँ कीर्तयतः कीर्तन करते हुए विप्राः हे ब्राह्मणों विप्रर्षे ब्रह्मर्षि से भूरी अत्यधिक तेजसः शक्तिशाली अहम् मैं च भी अध्यगमं समझ सकता हूँ तत्र उस सभा में निविष्टः अत्यधिक एकाग्रचित होकर तत् अनुग्रहात् उसकी कृपा से सह वही वस्तु अहम मैं वह तुमको श्रावयिष्यामि सुनाऊंगा यथा अधीतम यथामति अपने अनुभव के आधार पर। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब सुखदेव गोस्वामी ने वहाँ पर भागवत सुनाई तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना और इस तरह उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्तिशाली ऋषि से भागवत सीखी। अब मैं तुम लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूँगा जो मैं उनसे सीखा तथा जैसा मैंने अनुभव किया। तात्पर्य, यदि किसी ने सुखदेव गोस्वामी जैसे किसी स्वरूप सिद्ध महात्मा से भागवत सुनी है तो उसकी भागवत प्रश्नों में साक्षात भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन यदि कोई चाहे कि वह किसी ऐसे व्यर्थ के किराए के कथावाचक से भागवत सीखा सीख सकेगा जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन पाकर उसे विषय भोग में लगाना है, तो वैसा संभव नहीं है। भागवत को समझने का यही रहस्य है। न ही ऐसे व्यक्ति से भागवत समझी जा सकती है जो अपने संसारी पांडित्य से भागवत की व्याख्या करता हो। यदि कोई भागवत की पृष्ठभूमि में कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से भागवत समझनी होगी, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है, इसका कोई विकल्प नहीं है। सुत गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी के प्रामाणिक प्रतिनिधि है, क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिससे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। सुखदेव गोस्वामी ने भागवत उसी रूप से प्रस्तुत किया जिस रूप से उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। उसी तरह सुत गोस्वामी भी भागवत को उसी रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था। केवल सुनाना ही काफी नहीं, मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल पाठ की अनुभूति प्राप्त करे। निविष्ट शब्द बताता है कि सुत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया। भागवत को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि वास्तविक व्यक्ति से मनोयोग से सुने। सभी उसे हर पृष्ठ में भगवान कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर भागवत ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वो मनोयोग से नहीं सुन सकता। जो आहार शयन रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो भागवत की प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे श्री कृष्ण के दर्शन अवश्य हो सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के उस कृष्ण शीर्षक तृतीय अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तीसरा अध्याय 44 नंबर श्लोक। चौथे अध्याय का पहला नंबर श्लोक की तात्पर्य में तीसरे अध्याय की 44 नंबर श्लोक के कुछ चीजों को प्रभुपाद जी ने कोट करते हैं। तात्पर्य दोनों श्लोक एक दूसरे करने पड़े, भले अध्याय अलग हो जा रहा है यहाँ पर, मगर दोनों में गहरा संबंध है। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत सुनाया था। उसी चीज को सुत गोस्वामी ने सुना था वहां पर बैठकर। यहाँ पर यज्ञ का फल प्राप्त ना होने के वजह से मुनि ऋषियों ने सुत गोस्वामी को पूछा। तो छह प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, फिर उन्होंने सुत गोस्वामी ने बहुत सुंदर तरीके से छह प्रश्न का जवाब देते हैं। और पिछले श्लोक में 43 नंबर श्लोक में हम लोग देख रहे थे कि मुनि ऋषियों का जो छठा प्रश्न है धर्म किस चरण में गया था उसका जवाब उन्होंने दिया कि भागवत जो है कृष्ण के बाद भागवत इस संसार में लोगों को उद्धार करने के लिए है या प्रकाश प्रदान करने के लिए है। इस चीज को हम 43 नंबर श्लोक में देखा। 44 नंबर श्लोक में गुरु परंपरा का वर्णन है, भागवत गुरु परंपरा है कि नहीं? हमारा जो गुरु परंपरा है ना वो दीक्षा गुरु परंपरा नहीं है, भागवत गुरु परंपरा है अपना। एक होता है दीक्षा, उसके शिष्य उससे दीक्षा लिया, उसके शिष्य, और एक होता है भागवत गुरु परंपरा ना, उस ज्ञान का ज्ञान उन्होंने उनसे शिक्षा प्राप्त किया, उनसे शिक्षा प्राप्त किया, शिक्षा परंपरा जिसको कहते हैं, उसका ये वर्णन मिलता है 44 नंबर श्लोक में। यहाँ खत्म हो रहा है तीसरा अध्याय, इसलिए मैंने क्या किया तीसरा अध्याय को वो समरी को लिख दिया इसमें, ये आसान है समझने के लिए। उसमें श्लोक के साथ लिखा हूं, पहला प्रश्न कौन से श्लोक में है और उसका जवाब कौन से श्लोक में है, दूसरा प्रश्न कौन से श्लोक में है और उसका जवाब कौन से प्रश्न श्लोक में है, हाँ? ऐसा क्या
पूछने वाला था?
अच्छा, ये आसान रहेगा कभी भी समझने के लिए इसको। अवतारों का कथन के बारे में जब प्रश्न पूछते हैं उसमें अपने सुध गोस्वामी ने तीसरे अध्याय में पूरा बताते हैं अवतारों के बारे में, खास करके बहुत लंबा चौड़ा, क्योंकि 22 अवतारों का वर्णन करना रहता है ना उनको, इसलिए पांचवा प्रश्न है ना उनका 18 नंबर श्लोक में है, पहला अध्याय के 18 नंबर श्लोक में पांचवा प्रश्न। विविध अवतारों के दिव्य लीलाओं का वर्णन, विभिन्न अवतारों का लीला, मतलब में विभिन्न अवतारों की लीला के बारे में भगवान ने पूरे भागवतम में बताया एक्चुअली, है कि नहीं? पूरे भागवतम क्या है, अवतारों का लीलाओं का वर्णन ही है, मगर संक्षेप में यहाँ बताया 22 अवतार का। भाई कपिल मुनि ने आया उन्होंने संक्षेप फिलोसफी बताया, नारद मुनि ने आया भक्ति तत्व को बताया, है कि नहीं? और नारायण ऋषि ने आया तपस्या के बारे में बताया, और इस प्रकार से वामन अवतार होके आए, वामन अवतार कहा है 22 अवतार में, वामन कहा ना, तो उन्होंने बलि महाराज का उद्धार किया। इस प्रकार से संक्षेप में एक ही श्लोक में कभी एक एक अवतार का वर्णन, एक श्लोक में कभी दो दो अवतार का वर्णन, ऐसे करके उन्होंने कितने श्लोकों में उन्होंने किया मालूम है, 30 से लेकर 39 नहीं 5 से लेकर 27 नंबर श्लोक, मतलब लगभग 20 21 22 27 5 नंबर तीसरे अध्याय की 5 नंबर श्लोक से 27 नंबर श्लोक तक क्या
कल की होता
है 25 में है, 27 तक बोला तो 27 में क्या कुछ होगा और कुछ
25 की कल की होता है
25 में
हाँ
कल क्या होता है अवतारों का भगवान ने अवतारों को उसी तरह असंख्य जिस प्रकार 27 तक का अवतारों का ही वर्णन करता है, भले ही वो 22 को गिना दिए वहां तक, फिर बाद में बोलते हैं ना सारे मुनि ऋषि देवता विशेष रूप से शक्तिशाली मनु मनु के संतान ये सब के रूप में भगवान आते हैं 27 नंबर श्लोक में कहते हैं। हाँ ये सारी चीजें 27 नंबर श्लोक हो, 5 से लेकर मतलब कितना हो गया 22 श्लोक हो गया लगभग ना, 22 श्लोकों में 22 अवतारों का वर्णन करते हैं। फिर अंतिम श्लोक का वर्णन 43 नंबर श्लोक है, तीसरे अध्याय के उसमें करते हैं। यहाँ पे और तीसरे अध्याय का पूरा सार लिख दिया हो, पहला श्लोक से लेके 5वां नंबर श्लोक तक क्या करते हो, पुरुष अवतार का वर्णन करते है ना। हम लोग डिस्कस किए थे पुरुष अवतार कौन सा कौन सा, पुरुष अवतार प्रभु पुरुष अवतार कौन से है,
पुरुष
अवतार नहीं तीन पुरुष, वो तो गुण अवतार है, तीन पुरुष अवतार होते हैं ना, कारण दक्षा विष्णु, गर्भ दक्षा विष्णु और शिर दक्षा विष्णु, तीन पुरुष वर्णन 1, 2, 3, 4, 5 श्लोक में आया। फिर 5 नंबर श्लोक से लेकर 27 नंबर श्लोक तक में क्या आ गया, अवतारों का वर्णन, 22 अवतार पूरा आ गया। फिर 28 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण ही भगवान है ना, एते कांस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोक मृयंती युगे युगे, वो वाला श्लोक 28 नंबर। 29 नंबर श्लोक में उन्होंने क्या बताया कि ये जो अवतारों के बारे में हमने सुना ना, उस अवतारों के बारे में सुनने का महत्व क्या है या सुनने से क्या फल मिलता है, वो 29 श्लोक में बताया सुत गोस्वामी ने। प्रतिदिन व्यक्ति को इन अवतारों के बारे में सुनना चाहिए, वो वहां पे कहते हैं 29 नंबर श्लोक में सुत गोस्वामी ने। देखो जो भी भगवान के गुही अवतारों को सावधानी से प्रत्येक सुबह शाम को पाठ करता है वो जीवन के समस्त कष्टों से छूट जाता है। क्या है अवतारों का बारे में सुनने की फल, उसका वर्णन किया गया 29 नंबर श्लोक में। फिर 30 नंबर श्लोक से लेकर 39 नंबर श्लोक तक क्या है, भौतिक पदार्थ पदार्थ से कैसे ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा, परमात्मा से भगवान तक का जो समझ है नहीं, कैसे समझना चाहिए उसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है 30 से लेकर 39। क्यों अचानक परमात्मा और ब्रह्म और यहाँ तक यहाँ पे आए अवतारों के बाद, क्योंकि दूसरे अध्याय में एक जगह उन्होंने बोले थे, क्या बताए थे दूसरे अध्याय में एक जगह उन्होंने कहा है कि भगवत साक्षात्कार के 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो ब्रह्म के बारे में जानते हैं या ब्रह्म को जानते हैं उपासक है, और एक प्रकार के लोग होते हैं जो परमात्मा के उपासक, और एक होते हैं जो भगवान के उपासक है। तो भगवान का अवतार सब कुछ तो भगवान के बारे में हो गया, इसलिए थोड़ा सा ब्रह्म और परमात्मा के बारे में वो कहने लगे। हालांकि 1 से 5 नंबर श्लोक में परमात्मा का थोड़ा वर्णन आया है, कहाँ पे और शिरो दक्षिण विष्णु का वर्णन जब किया गया, मगर फिर से उन्होंने भौतिक तत्वों से या भौतिक ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा, परमात्मा से भगवान तक का जो समझ है उस चीज को उन्होंने 30 से 39 नंबर श्लोक में समझाया गोस्वामी। फिर 40 नंबर श्लोक से क्या किए उन्होंने, भागवत की महिमा बोलना चालू किया। 39 नंबर श्लोक में कौन सा महिमा था, अवतारों का गुणगान, अवतारों के बारे में सुनने से क्या महिमा है वो। अभी 40 नंबर श्लोक से 44 नंबर श्लोक तक क्या है, भागवत की महिमा, भागवत, हाँ भागवत कैसे ग्रंथ है, उसकी महिमा कैसे सुनना चाहिए, वो सारी चीजें 40 से 44 तक का। 39 में हमने सुना कि भागवत किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के बाद अगर कोई है संसार में लोगों को उद्धार करने के लिए तो भागवत है। भगवान कृष्ण द्वापर में आए, लीला करके चले गए, उसके बाद कौन है, तो भागवत है। ये प्रश्न का जवाब भागवत है। धर्म किसका शरण लिया, तो भागवत का। संसार को कौन प्रकाश दे सकता है ना, गीता और भागवत। ये 43 नंबर श्लोक है। अभी 44 नंबर श्लोक में मैंने क्या बताया, गुरु परंपरा के बारे में वर्णन किया गया अपना, भागवत परंपरा। देखो एक होता है दीक्षा परंपरा, कि एक दूसरे से दीक्षा लिया, वो उससे दीक्षा लो, उससे दीक्षा लो, उससे दीक्षा, ऐसा। हमारा संप्रदाय दीक्षा परंपरा से जुड़ा हुआ नहीं है, कहीं कहीं दीक्षा टूटा हुआ है। अब देखेंगे प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती तक ठीक है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज से दीक्षा लिया वो भी ठीक है, मगर संन्यास नहीं लिया उनसे, खुद से संन्यास लिया, एक ये हो गया। फिर दूसरा फिर आगे देखेंगे, हम फोटो रखते हैं गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के पास भक्ति विनोद ठाकुर का है ना, मगर भक्ति विनोद ठाकुर का गुरु गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज का गुरु भक्ति विनोद ठाकुर नहीं है, कोई और है। और भक्ति विनोद ठाकुर के बाद में जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का फोटो रखते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु नहीं है। जितिन बिहारी करके एक विपिन विहार गोस्वामी करके, वो भक्तिविनोद ठाकुर के गुरु थे, दीक्षा गुरु। हाँ सर, बाबा जी बेस्ट थे। हाँ बाबा जी बेस्ट तो उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी से लिए थे, भक्तिविनोद ठाकुर। एक और ऐसे दीक्षा अंदर जो है ना, मैंने ये लगाया था मस्कीटो का कॉइल, और इसमें डस्टबिन में, डस्टबिन के अंदर आग लग गया रहेगा, देखो। तो अगर दीक्षा के बारे में हम लोग देखेंगे ना, बीच बीच में कई बार छुपा हुआ है, में नहीं आएगा। हमारा शिक्षा परंपरा है भागवत परंपरा। भगवान ने ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्मा ने नारद को ज्ञान दिया, नारद मुनि को, नारद मुनि ने व्यास देव जी को ज्ञान दिया, व्यास देव जी ने मध्वाचार्य जी को ज्ञान दिया। जला नहीं था ना मध्वाचार्य, व्यास देव जी ने मध्वाचार्य जी को ज्ञान दिया। वो ज्ञान आते 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 फिर कहाँ आया, वो लक्ष्मीपति तीर्थ से माधवेंद्रपुरी को आया। माधवेंद्रपुरी का शिष्य हुए ईश्वरपुरी पाद, ईश्वरपुरी पाद ने दीक्षा दिया चैतन्य महाप्रभु को, है कि नहीं। मगर संन्यास लिए किसी और से चैतन्य महाप्रभु, हरिनाम दीक्षा ईश्वरपुरी से हुआ था। और ईश्वरपुरी ने मध्व संप्रदाय का होते हुए भी हर महामंत्र जपने के लिए दिया था चैतन्य महाप्रभु को हरिनाम। अभी फिर वहां से चैतन्य महाप्रभु के शिष्य वगैरह हो गए, रूप गोस्वामी इत्यादि, है कि नहीं। उनसे जाकर बलदेव विद्याभूषण कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर पास, और उसके बाद से जगन्नाथ दास बाबा जी, ये सब। आप दीक्षा के बारे में देखेंगे सभी लोगों के गुरु कुल कोई और है, मगर शिक्षा जो है इस प्रकार से चलता आ रहा है। हाँ प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत महाराज के बाद प्रभुपाद जी के बाद जो है वो थोड़ा सिस्टमेटिक दीक्षित, अभी भी दीक्षा जो है वो चल रहा है अभी तक, क्योंकि दो ही पीढ़ी तो हुआ है, प्रभुपाद जी के बाद उनके शिष्य अभी चल रहे, दो ही पीढ़ी हुआ है। तो इस प्रकार से यह हमारा शिक्षा परंपरा है। तो यहाँ 44 नंबर श्लोक में कुछ चीजें हैं ध्यान देने लायक। एक तो है सूत गोस्वामी अभी भागवत बताने वाले हैं, यह शुरू किया है भागवत बोलना। तो वो कह रहे भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या है मालूम है क्या, मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना हूँ, जहां पर उन्होंने परीक्षित महाराज को बताया थे वहां में था। मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे ऋषि मुनि बैठे थे बहुत सारे, मगर उस बीच में मैं भी था, और मैंने सुखदेव गोस्वामी से जो कुछ सुना हो वही बताऊंगा तुमको, ये कह रहे हैं, है ना। इससे जो प्रवक्ता होता है या प्रवचन देने वाला या शिक्षा देने वाला, उनके लिए शिक्षा है यहाँ पर। उनके लिए क्या शिक्षा है, उनके लिए शिक्षा यह है कि भागवत की या भगवत गीता की या शास्त्रों की श्लोकों के ऊपर या शास्त्रों के ज्ञान के ऊपर अपना मनगढ़ंत दिमाग न लगाकर जो कुछ अपने गुरु से सुने उसी चीज को प्रस्तुत करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ये उस व्यक्ति की शिक्षा है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो व्यास आश्रम में बैठता है या चार लोगों के सामने बैठता है बोलने के लिए, तो उन्हें चाहिए कि उनके गुरु जी ने जो कुछ बोला, खास करके अपने यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने जो कुछ बताया केवल उसी को सिखाना चाहिए लोगों को, ये शिक्षा है आज के लिए। क्योंकि सूत गोस्वामी क्या कहते हैं, मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक वहां सुना था, उसी तरह जो मैंने हृदयंगम किया उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा, ये चीज को सूत गोस्वामी कहते हैं। उसी तरह से यहाँ पे प्रभुपाद जी ने एक शब्द है, उस शब्द को थोड़ा सा ध्यान दिया। पहले तो प्रभुपाद जी ने शुरुआत में क्या किए, जो कैसे व्यक्ति से भागवत सुनना चाहिए उसके बारे में बोलते हैं। तात्पर्य का प्रारंभ है स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, अर्थात जो भगवान के भगवत भक्त है, उच्च कोटि के भक्त है, उनसे सुनना चाहिए। वो उच्च कोटि के भक्त भी वो क्या है, उसके पास जो ज्ञान है वो प्रामाणिक स्रोत से आया हुआ होना चाहिए। और साथ साथ में कुछ लोग होते हैं जिन लोगों ने पेशेदार भागवत कथाकारों से भागवत कथा कराते हैं या उनसे सुनते हैं, जिन लोगों का धंधा क्या है कि वो भागवत कथा करेंगे और उससे पैसा रोजगार करेंगे, उनका कोई दूसरा रोजगार की ये नहीं है, वृत्ति नहीं है। तो इस प्रकार के लोगों से हम कभी भी श्री कृष्ण को समझ नहीं पाएंगे, भले ही उनकी गाने गाते समय, उनकी बोलते समय हमको बहुत अट्रैक्टिव लग सकता है, बहुत सुंदर तरीके से कृष्ण के भजन गा सकते हैं, श्लोकाओं को गा सकते हैं, मगर वो सब हमारे हृदय को परिवर्तन करने लायक नहीं है। गुरुदेव कहते हैं अगर सूत गोस्वामी जैसे व्यक्ति के मुखारविंद से भागवत सुनेंगे ना, 10 स्कंद दूर की बात, पहले स्कंद की पहले पन्ने से ही हमको श्री कृष्ण का दर्शन हो सकता है कि नहीं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं 10वें स्कंद आएगा तभी श्री कृष्ण का अनुभूति होगा और दिव्य लीलाएं सुनेंगे, नहीं। अगर प्रामाणिक व्यक्ति से अगर हम सुन रहे हैं उनकी, हाँ, वो जिस प्रकार से भागवत को अपने अनुभव किया हुआ है उसको अगर वो प्रस्तुत करते हैं तो हम पहले स्कंद से ही, पहले श्लोक से ही भगवान का दर्शन कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति से सुनना चाहिए, निर्मत कर व्यक्ति होना चाहिए। इस सारे चीजें हम लोग सुनते आए हैं, पेशेदार लोगों से तो कभी सुनना ही नहीं चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। और ये पहला तात्पर्य का पहला भाग है। दूसरे भाग में प्रभुपाद जी एक बात को ध्यान देते हैं, वो कहते हैं केवल सुनना ही काफी नहीं है, खाली आके तोते जैसा सुनना या सुन लेना और फिर जाके रटना वो काफी नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि ध्यान पूर्वक मूल पाठ की अनुभूति प्राप्त करे। वो जो चीजों को सुना है ना और जो शब्दों को, जो लिखा हुआ श्लोक है, इन सारे चीजों को उनको क्या करना पड़ेगा, ध्यान पूर्वक क्या करना पड़ेगा उसको, हाँ, अनुभूति प्राप्त करना पड़ेगा, उसको समझना चाहिए, अनुभव करना चाहिए। यहाँ पे इस श्लोक में एक निविष्ट करके सेकंड लाइन में लास्ट में है, निविष्ट तद अनुग्रहात करके है। कि निविष्ट शब्द के बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि निविष्ट शब्द बताता है कि सूत गोस्वामी ने भागवत के रस को अपने कानों से पिया है कि नहीं। हाँ, भागवत का रस को कैसे मुंह से नहीं पी सकते, इसको कानों से पिया जा सकता है। हाँ? और जैसे हम धाम में यात्रा करते हैं तो हमको कानों से दर्शन करना चाहिए, आंखों से नहीं। आंखों से दर्शन करेंगे तो बिल्डिंग सब पेड़ पौधे ही दिखेंगे अपने को, कानों से दर्शन करना चाहिए। भागवत को भी कानों से पीना चाहिए, हाँ, ये जो भागवत रस का, तो निविष्ट शब्द का अर्थ एकदम से वो उसमें ये आविष्ट हो चुके थे सूत गोस्वामी। उस प्रकार से हमें भी प्रयास करना चाहिए जब श्रीमद् भागवतम को सुनते हैं या पढ़ते हैं, एकदम से मनोनिवेश करते हुए, ध्यान पूर्वक उसको हृदयंगम करते हुए हमको अध्ययन किंवा श्रवण करना चाहिए श्रीमद् भागवतम का। इस बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताते हैं और तात्पर्य के अंत में कहते हैं प्रभुपाद, यहाँ पर भागवत ग्रहण करने का रहस्य उल्लेख है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह मन योग से नहीं सुन सकता। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जिसके द्वारा मन उत्पत्ति मंत्र हमारा मन निश्चित रूप से शुद्ध होगा या शुद्ध होने की प्रक्रिया में है। इसलिए हम भागवत, इसलिए अरे हमारे डिवोटी इसको सुनेंगे वो मन योग से बैठ के सुन लेते हैं। आप एक आम आदमी को लेके आइए और आधा घंटा बिठाइए सुनने के लिए, बोलिए देखिए नहीं बैठ पाएगा। कितने बड़े बड़े लोग हैं, कितने दान भी देते, कितने लोग आते हैं प्रवचन होते समय आएंगे, दर्शन करेंगे, देख के चले जाएंगे, बैठ नहीं पाते। कई लोग बोलते कि अरे महाराज आएंगे, हम आता हूँ, दर्शन करता हूँ, सब करता हूँ, समय भी है मेरे पास, मगर बैठ के एक घंटा नहीं बैठ सकता हूँ मैं। एक वो एक व्यक्ति को फोन किया था मैनेजर बैंक का, आप आते बोले नहीं मैं आता हूँ रविवार को, आप भीड़ भाड़ में रहते हो मुझे देख नहीं पाए, और क्यों चले गए, तो मैं दिन भर काम का जाकर बैठ के कौन आधा घंटा इधर सुनेगा, जाके टीवी देखता हूँ घर में, दर्शन करके जाता हूँ, नहीं बैठ के सुन सकते। क्यों हम लोग बैठ जाते हैं, क्योंकि ये मन शुद्धि, हमारा मन शुद्धिकरण की प्रक्रिया में है, क्योंकि हम हरि नाम का जप करते हैं। हम आधा घंटा एक घंटा बैठ के ध्यान पूर्वक सुन लेते हैं। जो व्यक्ति जितना सत्व गुण में रहेगा, जिसका मन उतना शुद्ध हुआ रहेगा, वो व्यक्ति उतना देर तक बैठ के वो सुन सकता है और पढ़ सकता है, ये एक सीखने वाली बात है। और खास करके आहार, शयन, सोना, रक्षा, मैथुन में शुद्ध अगर नहीं है वो कर्म में भी शुद्ध नहीं होगा। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है, प्रारंभिक दृष्टि से ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन निश्चित रूप से हो पाएगा, ये प्रभुपाद जी कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा इस 44 नंबर श्लोक में, सबसे पहली बात तो यह है कि ये भागवत जो है परंपरा से आता है ना। सूत गोस्वामी ने मुनियों ने प्रश्न पूछा करके अपना कुछ कहानी सुनाया नहीं, वहां पे उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से जो कुछ सुना था वो बताया। और सूत गोस्वामी अहंकार पूर्वक ये नहीं बोल रहे हैं, वो नम्रता पूर्वक इस बात को दोहरा रहे हैं कि भाई मैं खाली उसी को बोल सकता हूँ या बताऊंगा जो मैंने सुना था। हाँ, मेरा नहीं कह रहा, इस बात को कह रहे हैं। ये स्रोत जो प्रवक्ता को ऐसा होना चाहिए, वो हमेशा प्रभुपाद जी इस बात को कहते हैं, तुम एक पोस्टमैन का काम करो, बस मैंने जो बोला हूं ना बस उसको लेकर दूसरों को बोलो, इतना करो बस, बाकी सब होगा, है कि नहीं। हमको उतना दिमाग लगाना चाहिए कैसे प्रभुपाद जी के सेंटेंसेस मैसेजेस दूसरे तक कान तक पहुंचे, करेंगे कृष्ण करेंगे, हमको एक मीडिएटर बनना है बस, ये बात प्रभुपाद जी भी कहते हैं। तो इस बात के शिक्षा एक मिलता है। दूसरा, भागवत को केवल सुनना काफी नहीं, उसको मनोनिवेश निवेश करते हुए उसको हृदयंगम करना चाहिए, उसको अपने जीवन में उतारने के लिए प्रयास करना चाहिए, ध्यान पूर्वक श्रवण करके, जैसे निविष्ट शब्द का वो वर्णन करते हैं। तीसरा, जब तक मन शुद्ध नहीं होता है तब तक हम ज्यादा देर तक बैठ कर मन योग से सुन नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जपा करते हैं, जिसके द्वारा हम ये मन को शुद्ध करने की प्रक्रिया में है, इसलिए हम लोग बैठकर सुन लेते हैं। इस प्रकार से ये कुछ शिक्षाएं इस 44 नंबर श्लोक से हमें प्राप्त होता है। आज ये चौथा अध्याय को प्रारंभ कर ही देते हैं, है ना, ये तीसरा अध्याय बहुत दिन हो गया। चौथा अध्याय का शीर्षक है नारद, श्री नारद का प्राकट्य, नारद मुनि का प्राकट्य। यहां तक सूत गोस्वामी ने बोल दिया, क्या भाई अवतार बोल दिए, अवतार के बारे में सुनने से फायदा क्या है बोल दिए, कृष्ण ही भगवान बोल दिए, फिर ब्रह्म परमात्मा और भगवान के बारे में बोल दिए, फिर बाद में भागवत का गुणगान कर लिए, भागवत का गुणगान करने के बाद धर्म किसके शरण में गया था वो बता दिए, और एंड में बोलते हैं कि मैंने सुखदेव गोस्वामी से जो बोला वही बोलूंगा, यहाँ तक हो गया। ये सुनने के बाद सभी लोग खुश हो गए, सभी मुनि ऋषि खुश हो गए, चलो सही चीज हमें मिल रहा है सुनने के लिए, हमें क्या मिल रहा है सुनने के लिए, सही चीज मिल रहा है और सही व्यक्ति मिला हुआ है हमको बताने के लिए। इस बात को सुन के अनुमोदन करते हैं, आपको मालूम है भागवत कथा में अनुमोदन होता है ना, कथा के बाद कथा के बीच में कुछ लोग खड़े होके जो वक्ता का गुणगान करते हैं, बधाई देते हैं, वो चीज चालू हुआ अभी। मैं सोच रहा था ये सब क्यों ऐसा कर रहे हैं करके, कभी कभी ठीक है वो कथा हुआ है, एडमिट थोड़ा बोला एकदम से लंबा खींचने, कभी ये यहाँ से गया लिया हुआ है शायद, गुणगान करना ये हमेशा होना चाहिए एक्चुअली, ये बधाई देना ये शुरू होता है उससे। सूत गोस्वामी भागवत कथा कर कौन रहा है, सूत गोस्वामी सुन रहे हैं, कौन, नैमिषारण्य सारे ऋषिगण, है कि नहीं। सूत गोस्वामी ने बोला मैंने जो कुछ सुखदेव गोस्वामी से सुना उसी को मैं बोलूंगा, इसको सुनकर सब खुश हो गए, खुश होकर अभी सूत गोस्वामी को बधाई हो रहा है, उनका प्रशंसा हो रहा है, क्या प्रशंसा हो रहा है, व्यास उपास्य, ये श्लोक को व्यास देव जी लिखते हैं। श्लोक को पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें तात्पर्य भी है वगैरह है प्रभुपाद जी का। व्यास उवाच, इति व्रीवाणम सुतय, इति व्रीवाणम सुतय मुनिनाम दीर्घसत्रिणाम, मुनिनाम दीर्घसत्रिणाम वृद्धः कुलपतिः सुतम्, वृद्धः कुलपतिः सुतम्। ब्रवृचः वहवृच सैनिको ब्रवीत्, ब्रह्मच शौनको ब्रवीत्। अनुवाद, सूत गोस्वामी को इस प्रकार बोलते देखकर दीर्घकालीन यज्ञोत्सव में लगे हुए समस्त ऋषियों में विद्वान तथा वयोवृद्ध नेता शौनक मुनि ने सुत गोस्वामी को निम्न प्रकार संबोधित करते हुए बधाई दिया। जब सुत गोस्वामी ने इस प्रकार बोल दिया तो उसको देखकर सारे ऋषि मुनियों में विद्वान सबसे पहला, दूसरा है बुजुर्ग, तीसरा है नेता, तीन चीजें। वो कौन थे? शौनक मुनि थे, शौनक ऋषि। उन्होंने खड़े हुए और सूत गोस्वामी को संबोधित करते हुए उनका बधाई दिया, उनको बधाई दी। रूपराज जी ने इसमें लिखते हैं, क्या लिखते हैं देखो, तात्पर्य। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती है या उसकी प्रशस्ति की जाती है, ये गुणगान, तो बधाई देने वाला निम्नलिखित योग्यता रखनी चाहिए। बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होना चाहिए। कोई भी बधाई नहीं दे देना चाहिए, कोई भी आके बाइक लेके गुणगान नहीं करना चाहिए। क्या क्या योग्यता होना चाहिए? उससे सभा का नेता होना चाहिए। वो सभा में से जो मीटिंग में या जो सत्संग में बैठे हैं या जहां पे है, जहां पे किया जा रहा है, उसका वो हेड होना चाहिए, है ना, सभापति होना चाहिए। फिर वो वयोवृद्ध भी होना चाहिए, मतलब सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होना चाहिए, एज में, वयोवृद्ध एज में होना चाहिए। उससे परम विद्वान भी होना चाहिए, उसको थोड़ा ज्ञान भी होना चाहिए, ऐसे ही कुछ एड़ा नहीं होना चाहिए, है ना, बूढ़ा है मगर एड़ा है, ऐसे नहीं चलेगा। समझ रहे क्या? मधुर पो मधुर किशोर पो, उसको थोड़ा बुद्धिमान भी होना चाहिए। तो श्री शौनक ऋषि, शौनक ना, श्री शौनक ऋषि ऋषि में ये सारे योग्यताएं थी। अतः जब सुत गोस्वामी ने श्रीमद भागवत की उसी रूप में सुनाने की इच्छा व्यक्त किया, जिस रूप से उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से सुना था, स्वयं उसी का अनुभव किया था, तो श्री शौनक जी उन्हें बधाई देने के लिए खड़े हुए। ये असलियत में सब होना चाहिए। एक बार की मजे मजे की बात है, मुझे कहीं पर प्रवचन के लिए बुलाया गया था। मैंने पहले मना किया, नहीं मुझे उधर जाना नहीं है। तो फिर उन्होंने कमल लोचन पो को बोला बोले जाओ वहां पर। बोला ठीक है, गया, प्रवचन दिया, प्रवचन हो गया, प्रवचन खत्म हुआ। खत्म होने के बाद एक व्यक्ति आया, माइक लिया। वहां पे वो प्रथा है कि हमेशा कोई ना प्रवचन के बाद वो चालू हो जाते हैं लेके माइक को, है ना। तो माइक ले एक जगह गया था प्रवचन देने के लिए, तो माइक लेके गुणगान करने चालू किया। बाइक लेते समय मैं सोच रहा था कुछ भी अल्लाह सदा बोलेगा करके। दो जगह ऐसा हुआ, एक जगह ऐसा हुआ कि उन्होंने माइक लिया, चालू किया कि प्रभु जी इतने अच्छे भक्त है, मीरा रोड मंदिर के है, हम इधर आ गए, बहुत अच्छा हो गया, ऐसे ऐसे शब्द को बोल, बहुत अच्छा हो गया, इधर आ गए, प्रवचन दिया उन्होंने, आप लोग तो ये पहले हमारे साथ रहते थे, पहले ये गृहस्थ थे, अभी ब्रह्मचारी बन गए। इसलिए ज्ञान होना जरूरी है। अभी भाई गृहस्थ कैसे ब्रह्मचारी हो सकता है? एक्चुअली उसका अर्थ यह था कि पहले हमारे जैसे सफेद कपड़ा पहन के घूमता था, पैंट शर्ट पहनता था, अभी ये लाल कपड़ा पहना है, ब्रह्मचारी पहना है। एक भक्त ऐसा किया है ना, वो संबोधन करते लैंड में। फिर दूसरी जगह गए, दूसरी जगह में जब कमल को बोले उसके बाद वो आके ये प्रभु जी इतने इतने ऊंचे कोटि के भक्त हैं, इतने अच्छे भक्त हैं, अब विश्वास नहीं करेंगे कि इन्होंने जीवन में कभी भी मंगल आरती मिस नहीं किया। मेरा यार इसने तो देखा नहीं, मैंने बहुत कल्टी मारा हो। पहली बात ये। दूसरा उन्होंने क्या बोला, क्या एक बहुत सुंदर बात उसने बोला जो मुझे बहुत हंसी आई थी, मैं भूल गया। मैं आके तुरंत कमल लोचन पर देखो, उन्होंने वहां पे इस पर बोल रहे थे करके, बहुत प्रचार करते हैं या भारत भर में प्रचार करते हैं, ऐसा कुछ बोला, क्योंकि तो उसको भी मालूम है कि वो नहीं करता हूं मैं, ऐसा मतलब मैंने जो जो चीजें नहीं करता हूं वो चीजों को उन्होंने माइक में बोला। इससे क्या एक्चुअली वो वक्ता का इंसल्ट किया जा रहा है एक्चुअली। अभी कोई हवलदार है उसको बोले कि तुम ही एसपी है, तुम ही डीआईजी है, तुम ही कलेक्टर है, तो उसका कान खिचरे जैसा हुआ ना, है कि नहीं। तो को बहुत सारा उन्होंने शब्दों को बोला, एग्जैक्टली भूल गया कि 2 साल पहले की बात है, और सपने मुझे ऐसा लग रहा था कि अपना, अभी मैं सपने ये नहीं बोल सकता हूँ कि उसने ऐसे बोल रहा है करके, मैं बस चुप रहा। और क्या क्या आया, कमल रसनपो को बताया कि उन लोगों ने ऐसा, कमल रसनपो बहुत हंसने लगे। इसीलिए कोई भी व्यक्ति खड़ा होकर बोलना नहीं चाहिए, और हाँ खास करके जो जिम्मेदारी में रहते हैं उन लोग को ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार की स्थिति में किसी को भी माइक नहीं देना चाहिए। हालांकि वो गुणगान नहीं होगा तो चलेगा, प्रवचन दिया खत्म हुआ, चलो किसी को भी माइक दे के उनका गुणगान नहीं कराना चाहिए, जाओ आप थोड़ा बोलो उनके बारे में, ऐसा नहीं, क्योंकि कभी कभी उनका अपमान भी हो सकता है। इसलिए एक तो वयोवृद्ध भी होना चाहिए, नहीं तो वो थोड़ा वहां का लीडर जैसा कुछ होना चाहिए, और थोड़ा नॉलेज भी उसके पास होना चाहिए कि क्या शब्दों का यूज किया जाए एक्चुअली, एग्जैक्टली वो चीज उसको जानकारी होना चाहिए। ये इस चीज को रूपा जी यहाँ पे कहते हैं। फिर बाद में प्रभुपाद जी लिखते हैं, उस व्यक्ति को चाहिए आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। कभी कभी अपने अहंकार के लिए हमारे आचार्य लोग प्रभुपाद जी ने जो लिखा उसको न बोल के अपने कई और से कुछ जान लिया करके उसके बारे में बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसके पूर्ववर्ती आचार्यों पर पूरा विश्वास होना चाहिए, साथ ही उसे विषय का ऐसा उत्तम ज्ञान होना चाहिए कि वो किसी विशिष्ट अवसर पर उस विषय को उपयुक्त ढंग से प्रस्तुत कर सके। किसको? जो प्रवचन देने वाला, जो प्रवचन दे रहा है, उस व्यक्ति को आचार्यों को प्रस्तुत होना बहुत जरूरी है। अगर उसको श्रद्धा नहीं है, खास करके प्रभुपाद जी के ऊपर श्रद्धा नहीं है, अपना ही कुछ वो कर रहा है, चाहे गुरु हो या चाहे कोई भक्त हो या सन्यासी कोई भी हो, ऐसे व्यक्ति को प्रवचन देने नहीं देना चाहिए, खास करके अपने सिस्टम के अंदर। दूसरा, अगर वो देखा भी है तो हमको नहीं सुनना चाहिए, वो अच्छा भी बोलते हैं तो भी नहीं सुनना चाहिए। ऐसे कुछ होते हैं, अपने अंदर ही रहते हैं, अपना ही खाएंगे, अपना ही बुराई करेंगे, ऐसे भी है। प्रभुपाद जी के घर में रहेंगे, प्रभुपाद जी का ही खाएंगे, और प्रभुपाद जी के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, ऐसे भी है। ऐसे कुछ ऐसे डिवोटी है, कहीं कहीं हमने देखा जो प्रवचन चलता रहेगा, प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ा जा रहा है, और वो चेहरे को कैसे करेंगे, क्या करें, प्रभुपाद जी ने बोला अभी क्या कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी प्रवचन नहीं देना चाहिए, भगा देना चाहिए वहां से। ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे लोगों से कभी नहीं सुनना चाहिए, उसको प्रभुपाद जी के ऊपर श्रद्धा होना पड़ेगा, होना बहुत जरूरी है, ये बहुत नित्यांत आवश्यक है। मूल पाठ का मूल उद्देश्य को पालन करना चाहिए उसको, खींचा तानी करके उसे कई अस्वस्थ अर्थों को निकालना नहीं चाहिए, तोड़ मरोड़ के दूसरा अर्थ का अनर्थ नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति को। सभा के नेता सौनक ने वक्ता श्री सूत गोस्वामी के महत्व को यथाधीतम तथा यथामति कहकर अनुमान लगा लिया, अतएव परम प्रसन्न होकर वे उन्हें बधाई दे रहे थे। क्यों प्रसन्न हुए थे प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना ना कि मैंने सुखदेव गोस्वामी से जो सुना था वही बोलूंगा, इसलिए सौनक मुनि ने खुश हो गए, मतलब कि चलो भाई सही व्यक्ति है, लेकिन जो भी गुरु जी से सुना वही बताएगा, टेढ़ा टेढ़ा नहीं करेगा इसमें, इसलिए सौनक मुनि जो है वो प्रसन्न होकर उनका गुणगान उनका बधाई कर रहे थे। तो भी बधाई और गुणगान करते हैं मगर वो अंदर से प्रसन्न नहीं रहते हैं, चाहते नहीं है, मगर बड़ा व्यक्ति है, बोला है कुछ लोगों के सामने करना है, प्रणाम करना है, कैसे करते हैं, नहीं हमको उनकी जो वाणी है या उन्होंने जो भी वक्तव्य दिया है उसको उसके ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। क्यों श्रद्धा होना चाहिए? अगर व्यक्ति पसंद नहीं है तो भी उन्होंने प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहा है ना, इसलिए हमको उनके प्रति तो श्रद्धा होना चाहिए। समझ रहे? अब इस सभा में भक्त तथा श्रोता दोनों ही प्रामाणिक थे। श्रोता भी प्रामाणिक है कि क्यों प्रामाणिक है? क्योंकि वो प्रामाणिक होने को स्वीकार किया था। प्रामाणिक थे, जिसमें श्रीमद् भागवत की दूसरी बार सुनाया जा रहा था। भागवत के ऐसे मानक वाचन वास्तविक उद्देश्य का बिना किसी कठिनाई के स्थिर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर किए बिना बाह्य प्रयोजन के लिए भागवत का वाचन वक्ता तथा श्रोता दोनों के लिए व्यर्थ श्रम है। इस उद्देश्य के बिना कोई सुनता है या कोई भागवत बोलता है तो वो केवल काम है, कंपनी में काम करने जैसा ही है। उसको पैसा मिलेगा, उसका उसका खर्चा हो रहा है और कुछ फायदा उसका नहीं होगा। इस प्रकार से रूपा जी श्रीमद भागवतम के चौथे अध्याय के पहला नंबर श्लोक का व्यास मुनि के बातों को समझाते हैं। संतरा श्रीमद भागवतम की श्रील प्रसाद की निदाय गौर प्रमाण अंशा गौर पत्र विष्णु वैष्णव प्रतिदानम पावन वैष्णव नमो नमः।